पृष्ठ संख्या 60 अध्याय 4 पुरास्थलों का अन्वेषण। पुरातत्व से संबंधित अध्ययन और अनुसंधान में पुरास्थलों के अन्वेषण कार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। पुरास्थलों की खोज को प्रायः पुरास्थल अन्वेषण अथवा पुरास्थल सर्वेक्षण साइट सर्वेइंग या क्षेत्रीय सर्वेक्षण रीजनल सर्वेइंग कहा जाता है। अंग्रेज पुरातत्वविद इसे व्यवहारिक पुरातत्व या फील्ड आर्कियोलॉजी कहना पसंद करते हैं। फील्ड आर्कियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम फ्रीमैन ने उन प्राकृतिक विज्ञानियों के लिए किया था जो वनस्पतियों एवं जीवित प्राणियों का अध्ययन उद्यानों एवं संग्रहालयों में नहीं बल्कि उनके प्राकृतिक परिवेश में करते थे। प्राकृतिक विज्ञान के अन्य बहुत से शब्दों की भांति फील्ड आर्कियोलॉजी शब्द को भी पुरातत्व ने आत्मसात कर लिया। OGS क्रॉफर्ड के अनुसार पुरातत्व में अन्वेषक पुरातत्वविद फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो जमीन की ऊपरी सतह पर वर्तनों के ठीकरों पाषाण उपकरणों आदि के रूप में बिखरे हुए मानवकृत अतीत के पुरावशेषों को ग्रामीण अंचलों में पैदल घूम घूम कर ढूंढता और उनका विवरण तैयार करता है। 19वीं शताब्दी ईस्वी तक पुरातत्व संबंधी खोज कार्य मनमाने एवं अव्यवस्थित ढंग से किए जाते थे। इसके पश्चात पुरास्थलों के अन्वेषण तथा अनुसंधान का कार्य सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित ढंग से किया जाने लगा। सामान्यतः व्यवहारिक पुरातत्व के अंतर्गत अन्वेषण या परिमार्गण एक्सप्लोरेशन के अतिरिक्त उत्खनन की भी गणना की जाती है। कार्यालयों संग्रहालयों पुस्तकालयों एवं विश्वविद्यालयों से बाहर निकलकर पृथ्वी के उन्मुक्त प्रांगण में पुरावशेषों एवं पुरानिधियों की खोज से पुरातत्व का पृष्ठ संख्या 61 अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। सर्वेक्षण की उपेक्षा करने वाले पुरातत्व के अध्येता सुविज्ञा इतिहासविद एवं तुलनात्मक प्राचीन भाषाविद तो हो सकते हैं लेकिन सही अर्थों में पुरातत्वविद कतई नहीं हो सकते हैं। यद्यपि किसी देश या क्षेत्र के प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक पुरास्थलों की खोज का विवरण आजकल प्रायः घूम घूम कर तैयार किया जाता है तथापि पुरास्थलों के सर्वेक्षण के लिए सर्वप्रथम पैदल घूमना अब आवश्यक नहीं है। आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार पैदल चलने के अलावा जीप बस एवं रेलगाड़ी आदि में सफर करके संभावित पुरास्थलों तक पहुंचा जा सकता है। अन्य कोई साधन सुलभ न होने पर हाथी घोड़े एवं ऊंट आदि पर सवार होकर भी पुरातत्व महत्व के स्थलों तक पहुंचकर खोज कार्य विगत अतीत में किए गए हैं। उपयुक्त वाहनों का आज भी आवश्यकता अनुसार सहारा लिया जा सकता है। प्राचीन स्थलों को ढूंढने के दो प्रमुख तरीके हैं, एक अन्वेषण दो उत्खनन। पुरास्थलों को खोजने की क्षमता एतद् विषयक किताबी ज्ञान मात्र से नहीं प्राप्त की जा सकती। इस कार्य को करो एवं सीखो लर्न बाय डूइंग पद्धति से आसानी से सीखा जा सकता है। खोज कार्य को प्रारंभ करना भी अपेक्षित है। सतत अभ्यास के अध्यवसाय से पुरास्थलों के ढूंढने की कला में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। प्राकृतिक शक्तियों एवं मानव के क्रियाकलापों के फलस्वरूप निरंतर तेजी से विनष्ट हो रहे पुरास्थलों की क्षतिपूर्ति असंभव है। इसलिए पुरास्थलों को ढूंढ ढूंढ कर इनका विस्तृत ब्यौरा तैयार करना बहुत जरूरी हो गया है। अन्वेषक दल एवं उसके साथ सामान। पुरातत्व एक बहुआयामी एवं विविध विषयोपेक्षी विषय हो गया है। ऐसी स्थिति में खोज कार्य का स्वरूप एवं उद्देश्य भी व्यापक तथा जटिल होता जा रहा है। पुरातत्व के संपूर्ण रूप से अध्ययन के साथ ही साथ उसके विशिष्ट पक्षों के संबंध में एक निश्चित देश और काल के परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान का भी अपना विशेष महत्व है। अन्वेषक दल का संगठन एवं उसके सदस्यों की संख्या आदि परियोजना प्रोजेक्ट के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। बड़ी बड़ी पुरातात्विक परियोजनाओं में अनेक विशेषज्ञों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में स्वयंसेवी अन्वेषक अथवा श्रमिक होते हैं। पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति, सर्वेक्षणीय क्षेत्र के आकार, परियोजना के देश एवं काल तथा संसाधनों पर खोजी दल के सदस्यों की संख्या प्रायः निर्भर करती है, लेकिन छोटे से छोटे सर्वेक्षण में भी कम से कम दो व्यक्ति अवश्य होने चाहिए। दो लोगों के होने से लाभ यह होगा कि यदि कोई पुरावशेष किसी एक व्यक्ति की नजर से बच जाएगा तो दूसरे सदस्य की दृष्टि उस पृष्ठ संख्या 62 पर पड़ने की संभावना रहती है। खोज कार्य में स्थानीय पथ प्रदर्शकों, लोकल गाइड्स अथवा सहायकों की सहायता प्राप्त करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। स्थानीय लोग पुरातात्विक सर्वेक्षण में बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। किसी क्षेत्र विशेष के पुरास्थलों, रीति रिवाजों एवं आने जाने के साधनों आदि के संबंध में स्थानीय व्यक्तियों को प्रायः अच्छी जानकारी रहती है। किसी गांव के प्राचीन टीलों एवं अन्य पुरास्थलों, नदी नालों तथा पर्वतों आदि के नामों इत्यादि की सूचना स्थानीय पथ प्रदर्शकों के अतिरिक्त वहाँ के ग्रामविदों से भी प्राप्त की जा सकती है। पुरातात्विक खोजी दल के लिए बहुत अधिक साज सामान साथ में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, यथासंभव कम से कम किंतु आवश्यक सामान ले जाना अच्छा रहता है। मौसम के अनुसार पहनने एवं ओढ़ने के वस्तुओं की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। अन्य आवश्यक साज सामानों में संबद्ध क्षेत्र का मानचित्र, विवरण पंजिका, साइट नोटबुक, मीटर, सेमी अंकित फीते एवं मापक, स्केल्स, कैमरा, पेंसिलें, पेन, रबर, पुरावशेष एवं पुरानिधियों को भरने के लिए कागज के लिफाफे तथा कपड़े या प्लास्टिक की मजबूत थैलियां, पुरास्थल कार्ड और डोरे आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पुरावशेषों एवं पुरानिधियों आदि की थैलियों में रखने के बाद एक साथ भरने के लिए बोरा या बोरी अथवा पिट्ठू बैग, नैपपैक आदि का भी पर्याप्त संख्या में प्रबंध करना आवश्यक है। पुरास्थल सामान्यतः ऐसे स्थल अथवा स्थलों को कहा जाता है जहाँ पर मानव के विगत क्रियाकलापों अथवा आवास के संकेत, उपकरणों एवं अन्य पुरावशेषों के रूप में बिखरे हुए मिलते हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में इस प्रकार के पुरास्थलों को पृथ्वी अपने आंचल में छिपाए हुए है। पुरास्थलों की संख्या एवं आकार प्रकार प्राचीन काल के मानव के क्रियाकलापों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पुरास्थलों का आकार सीमित हो सकता है और विस्तृत ऊंचे टीले के रूप में भी हो सकता है। प्रागैतिहासिक काल के मानव के सीमित सांस्कृतिक उपादानों एवं यायावर जीवन पद्धति के कारण पुरास्थलों का आकार प्रकार अपेक्षा के छोटा एवं सांस्कृतिक स्तरों का जमाव प्रायः पतला मिलता है। भारत में ऐतिहासिक काल के अधिकांश पुरास्थल प्रायः टीलों के रूप में मिलते हैं। पुरास्थलों के खोजकर्ता को किसी पुरास्थल के संबंध में यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। विवरण पंजिका में अधोलिखित सूचनाएं अंकित की जा सकती हैं। एक, पुरास्थल का नाम, जिले एवं प्रांत के नाम सहित। दो, मानचित्र में स्थिति यथासंभव अक्षांश एवं देशांतर के साथ। तीन, पुरास्थल का पुरातात्विक संक्षिप्त विवरण, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, गुफा, टीला, समतल मैदान आदि। चार, आकार। पांच, ऊंचाई। छह, अनुमानित निक्षेप गहराई। सात, वनस्पति जीव जंतु। आठ, पेयजल का साधन। नौ, वर्तमान स्थिति, पृष्ठ संख्या 63, उजाड़ टीला आदि। 10, पुरास्थल से एकत्रित किए गए पुरावशेषों का संक्षिप्त विवरण। 11, अचल एवं भारी पुरावशेषों की नाप जोख, लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई आदि। 12, पुरास्थल का स्वामित्व, मालिक का नाम एवं पूरा पता आदि संभव हो, यदि संभव हो मालिक का उत्खनन के प्रति रुख। 14, पुरास्थल से संबंधित स्थानीय परंपराएं। 15, खोजकर्ता का नाम एवं दिनांक। 16 विशेष विवरण यथा पूरा स्थल का रेखाचित्र एवं पूरा स्थल तक पहुंचने का मार्ग एवं साधन आदि। पूरा स्थलों के अन्वेषण की प्रमुख विधियां। अन्वेषण या पैदल परिमार्जन के से लेकर आकाशीय छायांकन एरियल फोटोग्राफी द्वारा चुंबकीय परीक्षण मैग्नेटिक प्रोस्पेक्टिंग आदि विधियां आजकल पुरास्थलों की खोज के लिए अपनाई जा रही हैं। इन विधियों का क्रमशः विकास हुआ है। प्रारंभ में पुरास्थलों की जानकारी आकस्मिक खोज तथा अन्वेषण सर्वेक्षण के आधार पर होती है। यह कार्य योजनाबद्ध ढंग से नहीं किया जाता था। ऐतिहासिक काल से संबंधित पुरास्थलों की खोज धार्मिक साहित्यिक एवं ऐतिहासिक प्राचीन ग्रंथों में प्राप्य वर्णनों तथा यात्रियों के वृत्तांतों आदि की सहायता से की जाती थी। हेनरिक स्लीमन द्वारा हिसारलिक नामक स्थल की प्राचीन ट्राय नगर से पहचान इस प्रकार की खोज का एक अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है। भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक जनरल कनिंघम ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग के यात्रा वृत्तांत के आधार पर उत्तर भारत के अनेक ऐतिहासिक पुरास्थलों का पता लगाने में सफलता प्राप्त की थी। पुरातात्विकों से यह प्रश्न प्राय किया जाता है कि पुरास्थलों को कहाँ पर खोजा जाए, इस बात का निश्चय वे लोग कैसे करते हैं। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि पुराविद अपने अध्ययन एवं प्रशिक्षण के आधार पर इस तरह की समस्याओं का समाधान करते हैं। जिस काल विशेष से संबंधित पुरास्थलों की खोज करने का लक्ष्य हो, उन्हीं के अनुसार क्षेत्र का चुनाव किया जा सकता है। पुरापाषाणिक मानव प्राय पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में निवास करते थे, क्योंकि उनका जीवन फल फूल तथा कंदमूल के संग्रह और जंगली पशुओं के शिकार पर आश्रित था। नवपाषाणिक मानव ने घने वनों से निकलकर अपेक्षा के समतल पर्वत की तहलटियों को अपने निवास के लिए चुना था। ऐतिहासिक काल के अधिकांश ग्राम एवं नगर प्राय नदियों के किनारे मैदानी क्षेत्र में स्थित होते थे। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदा कदा उपर्युक्त कथन के अपवाद भी देखने को मिलते हैं। उदाहरणार्थ गांगेय क्षेत्र के मैदानी भाग में स्थित उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अनेक स्थानों पर मध्य पाषाण काल के पुरास्थलों की खोज की गई है। पृष्ठ संख्या 64। पुरास्थलों की खोज का कार्य बहुत सरल कार्य नहीं है। पुरास्थलों को खोजने की विधियों को प्रमुख दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक परंपरागत पुरातात्विक पद्धति, दो वैज्ञानिक पद्धति। परंपरागत पुरातात्विक पद्धति पुरावशेषों एवं पुरानिधियों को खोजने की अपेक्षाकृत एक पुरानी पद्धति है। यह विधि सरल एवं कम खर्चीली है। खोज कार्य की परंपरागत पुरातात्विक पद्धति के अंतर्गत एक आकस्मिक खोज चांस डिस्कवरीज, दो तलचिन्ह संकेत सरफेस इंडिकेशंस तथा तीन साहित्यिक विवरण लिटरेरी अकाउंट्स आदि की गणना की जा सकती है। आकस्मिक खोज मानव की क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप अथवा प्राकृतिक कारणों से जब किसी पुरास्थल के विषय में अनायासी जानकारी हो जाती है तो इसको आकस्मिक खोज की संज्ञा दी जाती है। अनेक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध पुरास्थल इसी प्रकार से प्रकाश में आए हैं। भारत के पुरातत्व में बहुचर्चित ताम्र निधियां कॉपर हॉट्स आकस्मिक ढंग से ही समय समय पर प्रकाश में आती रही हैं। भारत की अनेक मुद्रा निधियां क्वाइन हॉट्स भी संयोग जनित ढंग से ही प्रायः विदित हुई हैं। इस संबंध में राजस्थान के भरतपुर जिले में प्राप्त बयाना मुद्रा निधि एक किसान को एक खेत की मेड़ के नीचे 17 फरवरी सन 1946 में मिली थी, जिसमें गुप्त राजवंश के 6 राजाओं की संभवतः 2100 स्वर्ण मुद्राएं थी, जिसमें वे केवल 1821 स्वर्ण मुद्राएं ही अध्ययन के लिए उपलब्ध हो सकी थी। फिलिस्तीन में एक गुफा से डेड सी स्क्रॉल्स नामक प्राचीन पांडुलिपियां भी आकस्मिक ढंग से प्राप्त हुई थी। यूरोप की उच्च पुरापाषाणिक चित्रकला से संबंधित फ्रांस की विख्यात लास्को तथा स्पेन की अल्तामिरा गुफाओं की खोज भी आकस्मिक एवं अप्रत्याशित रूप से हुई थी। तल चिन्ह संकेत मानव के आवास एवं अन्य क्रियाकलापों के संकेत चिन्ह पुरास्थलों की ऊपरी सतह पर कभी कभी बिखरे हुए मिल जाते हैं। प्रागैतिहासिक पुरापाषाणिक स्थलों पर मानव निर्मित एवं प्रयुक्त पाषाण के औजार एवं उपकरण विकीर्ण मिलते हैं। यदा कदा ऐसे उपकरणों के साथ जानवरों की अस्मीभूत अस्थियां भी उपलब्ध हो जाती हैं। ऐसे पुरास्थल जिन्हें आवास स्थल कहा जाता है, वे तत्कालीन मानव के कार्य व्यापार के प्रमुख केंद्र होते थे। ऐतिहासिक काल के नगर स्थलों से सटे हुए क्षेत्रों में प्राचीन समाधि स्थलों, कमेंटेरीज, पारिखा मोठ, प्राचीर, डिफेंस वॉल्स आदि के मिलने की संभावना होती है। पृष्ठ संख्या 65। प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एवं इराक आदि क्षेत्रों में ऊंचे टीलों के रूप में मिलते हैं। इन प्राचीन टीलों में पानी एवं हवा से कवाब छटाव होता रहता है। अनेक पुरावशेष विशेषकर मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े टीलों के निचले भाग में तल पर बिखरे हुए मिलते हैं। इन ठिकरों से टीलों की प्राचीनता का अनुमान किया जा सकता है। टीले इस बात के भी प्रतीक होते हैं कि इन स्थलों पर मानव का विकास सुदीर्घ काल तक बना रहा। पुरास्थलों के अस्तित्व का अनुमान शस्य एवं मुद्रा संकेतों के आधार पर भी लगाया जा सकता है। पुरास्थल को समतल करके जहाँ पर खेत बना लिया गया है, वहाँ पर इस प्रकार के संकेत विशेष रूप से सहायता सिद्ध होते हैं। पुरास्थल की खाई पारिखा वाले भाग में फसल एवं पेड़ पौधे विशेष रूप से हरे भरे रहते हैं। यदि नीचे ईंट अथवा पत्थर की दीवार है तो फसल का रंग पीलापन लिए हुए होता है। किसी स्थान की मिट्टी के अपेक्षाकृत गहरे रंग तथा राख एवं कोयले के बिखरे होने से भी पुरास्थल का संकेत मिलता है। प्रातः एवं सायंकाल की किसी स्थान की छाया के आधार पर भी पुरास्थल के द्वारा छिपे होने का अनुमान लगाया जा सकता है। ईंटों की बनी हुई दीवारों के छिपे हुए अवशेषों के विषय में खोज के लिए प्रतिबिंबित छाया का संकेत विषय सहायक सिद्ध हो सकता है। साहित्यिक विवरण किसी देश के प्राचीन वाङ्मय के उपलब्ध साहित्यिक साक्ष्यों, यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों आदि के आधार पर ऐतिहासिक काल के पुरास्थलों की खोज की जा सकती है। इन साक्ष्यों की विश्वसनीयता की जांच पड़ताल पुरातत्व वेत्ता स्थानों पर जाकर स्वयं कर सकते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के साहित्यिक साक्ष्य विशेष उपादेय होते हैं। सर्वेक्षण पर निकलने के पूर्व साहित्यिक साक्ष्यों के किसी पुरास्थल के विषय में जितनी अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके उतना ही अच्छा रहता है। इससे किसी पुरास्थल पर किस प्रकार के पुरावशेषों के मिलने की संभावना हो सकती है, इस बात का भी यथासंभव पूर्वानुमान किया जा सकता है। साहित्यिक साक्ष्यों में प्राप्त पौराणिक आख्यानों एवं पुराकथाओं को यथा तथ्य रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें अतिरंजना एवं कवि कल्पना का यथेष्ट पुट भी रहता है। साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर पुरातात्विक खोज का प्रसिद्ध उदाहरण हेनरिक स्लीमन 1822 से 1890 द्वारा प्राचीन ट्रॉय की खोज को माना जा सकता है। प्राचीन यूनान के कवि होमर के इलियड और ओडिसी महाकाव्यों के प्रेमी जर्मन व्यापारी हेनरिक स्लीमन ने इन महाकाव्यों में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ट्रॉय एवं अन्य कई पुरास्थलों को ढूंढ निकालने में सफलता प्राप्त की थी। पेट्रोल के व्यापार के माध्यम से विपुल धनराशि अर्जित करने के पश्चात सन 1871 में स्लीमन ने तुर्की के हिसारलिक नामक स्थान को ट्रॉय मानकर उसे उत्खनन के लिए चुना। इस स्थान का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि यह स्थल होमर के महाकाव्यों में पृष्ठ संख्या 66 वर्णित ट्रॉय से बहुत मेल खाता था। एक वर्ष के अनवरत प्रयास के पश्चात श्रीमान वहाँ पर सोने चांदी एवं बहुमूल्य रत्नों का एक खजाना खोजने में सफल रहा। श्रीमान ने इसको रानी प्रियम का खजाना घोषित किया। सन 1873 में राजा एग्मेनन की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए मायसिनी नामक स्थल में उसने उत्खनन प्रारंभ किया। इस कार्य में भी श्रीमान को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। सन 1884 में होमर द्वारा वर्णित टीरिंस के राजप्रसाद को खोज निकालने में वह सफल रहा। अत्यधिक उत्साह के कारण श्रीमान के अनेक ऐसे निष्कर्ष निकाले जो बाद के अनुसंधानों से गलत सिद्ध हुए, लेकिन उसकी खोजों का महत्व इस बात में निहित है कि उसने साहित्यिक साक्ष्यों में सुरक्षित आख्यानों को पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने की संभावना की ओर पुराविदों का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार बाइबल में वर्णित फिलिस्तीन के तीर्थस्थलों के विषय में भी साहित्यिक विवरणों एवं वास्तविक भौगोलिक स्थिति में आश्चर्यजनक समानता पुरातत्व के खोजकर्ताओं को देखने को मिली थी। भारत में संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं तमिल भाषाओं में विपुल मात्रा में प्राचीन वाङ्मय उपलब्ध है। इस प्राचीन साहित्यिक राशि के साक्ष्यों की पुरातात्विक संभावनाओं का पूरी तरह से आकलन होना अभी शेष है। प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्ववेत्ता ब्रजवासी लाल ने महाभारत एवं रामायण में वर्णित स्थलों की पुरातात्विक संभावनाओं की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित पुरास्थलों से संबंधित परियोजना पर बीबी लाल के नेतृत्व में सन 1975 से सन 1986 तक कार्य हुआ है। अयोध्या, नंदीग्राम, सिंगवेरपुर, भारद्वाज आश्रम तथा चित्रकूट का उत्खनन हुआ है। सन 629 से 645 के बीच भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री वेनसांग के यात्रा वृत्तांत के आधार अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1861 के से 1865 के बीच उत्तरी भारत के ऐतिहासिक काल के अनेक पुरातात्विक स्थलों का पता लगाने में सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद सन 1876 से 1885 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक के रूप में कनिंघम ने अनेक स्थलों का स्वयं भ्रमण किया था और 23 जिल्दों में अपनी खोजों का विवरण प्रकाशित किया था, जो आज भी भारतीय ऐतिहासिक पुरातत्व के अनुसंधानकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है। वैज्ञानिक पद्धति पुरास्थलों को खोजने के लिए परंपरागत पद्धति के अतिरिक्त वैज्ञानिक पद्धति का भी सहारा लिया जाता है। विज्ञान की बहुमुखी प्रगति के फलस्वरूप पुरास्थलों की खोज भी की अनेक विधियों का विकास संभव हुआ है। वैज्ञानिक विधियां अधिक सटीक एवं उपयुक्त हैं, लेकिन ये विधियां प्रायः व्ययसाध्य हैं और इनका पृष्ठ संख्या 67 प्रयोग भी सर्वत्र नहीं हो सकता है। प्रमुख वैज्ञानिक विधियों में हवाई छायांकन, भू परीक्षण, चुंबकीय परीक्षण, मृदा विश्लेषण एवं समुद्र तल की तात्विक खोज का उल्लेख किया जा सकता है। हवाई छायांकन पुरास्थलों की खोज का हवाई छायांकन एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हवाई छायांकन की विधा का विकास क्रमशः हुआ। पुरातत्व संबंधी अनुसंधान कार्य में हवाई छायांकन के महत्व को प्रतिस्थापित करने वाले व्यक्तियों में ओजीएस क्रॉफर्ड, ब्रिजले, मेजर एलन एवं क्रुक्सन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रथम एवं विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध के समय हवाई छायांकन में तकनीकी दृष्टि से विशेष प्रगति हुई। तब से लेकर आज तक बहुत अधिक तकनीकी प्रगति हो चुकी है। हवाई जहाज में लगाए जाने वाले शक्तिशाली कैमरे एक बार में ही विस्तृत क्षेत्र का शीर्षक वर्टिकल का शैक्षिक वर्टिकल चित्र उतारने में सक्षम होते हैं। हवाई जहाज में खींचे गए फोटोग्राफों के आधार पर तल चिन्हों, सस्य संकेतों एवं प्रतिबिंबित संकेतों को विशेषज्ञ आसानी से पहचान सकते हैं। हवाई छायांकन से प्राप्त जानकारी के आधार पर किसी क्षेत्र अथवा स्थल का पुरातात्विक सर्वेक्षण अधिक सफलता एवं सूक्ष्मता के साथ किया जा सकता है। समतल एवं चौरस पुरातात्विक स्थल जो सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, उनका हवाई छायांकन के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त चित्रों के द्वारा पुरातात्विक अनुसंधान कार्य और अधिक आसान हो सकता है। इस प्रकार हवाई छायांकन तथा सैटेलाइट छायांकन पुरास्थलों को खोजने के अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन भारत में इन विधाओं का पुरातात्विक कार्यों के लिए अभी नगण्य रूप से ही उपयोग हो रहा है। इस संबंध में शासकीय रीति नीति में परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है, जिससे इनका सही उपयोग हो सके। भू सर्वेक्षण के माध्यम से ज्ञात पुरास्थलों के विशिष्ट स्थान को ढूंढने की प्रमुख विधियों में भू परीक्षण की विधि का उल्लेख किया जा सकता है। भू परीक्षण की कई विधियां हैं। लौह शलाका प्रवेश प्रोबिंग एवं ध्वनि परीक्षण बॉसिंग सबसे आसान एवं कम खर्चीली विधियां हैं। धातु अभिभावक मेटल डिटेक्टर विद्युत प्रतिरोध मापक तथा चुंबकीय परीक्षण आदि बहुत जटिल एवं व्यसाध्य विधियां हैं, जिनका सर्वत्र एवं सभी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के यंत्र सर्वत्र आसानी से उपलब्ध नहीं है और इनका परिचालन अनुभवी तकनीशियन ही कर सकते हैं। लौह शलाका भू परीक्षण के लिए प्रयोग में आने वाली लौह शलाकाएं आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न आकार प्रकार की हो सकती हैं। सामान्यतः इस प्रकार की पृष्ठ संख्या 68 छड़ लगभग 1 मीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर मोटी होती है, जिसका उत्तरी सिरा अंग्रेजी अक्षर टी के आकार का एवं निचला सिरा नुकीला होता है। इसको हाथ से दबाकर जमीन में नीचे धसाया जाता है। भूमि में छड़ को अंदर धसाते समय यदि कोई अवरोध हो तो प्राय यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नीचे पुरावशेष छिपे हुए हैं। यदि कोई अड़चन आए तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर मानव आवास के चिन्ह नहीं है। जिन स्थलों पर भवनों की दीवालों आदि का के अवशेष छिपे होने की संभावना है, वहां पर यह विधि अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अधिक से अधिक तथ्य संकलित करने से उद्देश्य के संपूर्ण क्षेत्र को वर्गाकार हिस्सों में विभाजित कर लेने से सुविधापूर्वक परीक्षण किया जा सकता है। वर्गाकार क्षेत्र का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के तथ्य संकलित करने का लक्ष्य है। शब्द ध्वनि इस विधि में लकड़ी के दुर्मुसों का उपयोग भूमि को कूटने के लिए किया जाता है। कूटने पर यदि तेज आवाज होती है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जमीन के नीचे पुरावशेष विद्यमान है। यदि आवाज हल्की है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहां पर किसी प्रकार के अवशेष नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विधियां पुरातात्विक दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक विधियों द्वारा भू परीक्षण किया जाता है, लेकिन इस विधियों में सबसे बड़ी बाधा यह है कि ये विधियां व्यय साध्य हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। इनके अलावा इनके परिचालन में पर्याप्त अभ्यास एवं बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। साधारण कोटि के पुरास्थल सर्वेक्षणों में इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को ले जाना संभव नहीं है। धातु अभिज्ञापक अथवा मेटल डिटेक्टर का उपयोग उन्हीं पुरास्थलों पर किया जा सकता है जो धातु से संबंधित हो। इसका एकमात्र कार्य धातु निर्मित पुरावशेषों एवं पुरानिधियों का पता लगाना है। समाधियों एवं मकबरों आदि की खोज में धातु अभिज्ञापक नामक इस यंत्र का उपयोग अधिक सफलता के साथ किया जा सकता है। इस यंत्र की प्रमुख त्रुटि यह है कि यह आजकल के टीन के डिब्बे एवं कांस्य काल की बनी हुई प्राचीन तलवार में भेद नहीं कर सकता है। विद्युत प्रतिरोध मापक पुरास्थलों की सीमा के अंदर स्थित पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की खोज के लिए मेटल डिटेक्टर से बहुत प्रतिरोध मापक नामक मेटल डिटेक्टर से विद्युत प्रतिरोध मापक नामक यंत्र अधिक उपयोगी है। इस विधि में एक निश्चित अंतराल पर कई इलेक्ट्रोड जमीन के अंदर स्थापित किए जाते हैं। इस विधि में कम से कम 4 इलेक्ट्रोडों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। जिस इलेक्ट्रोड द्वारा वोल्टामीटर पृष्ठ संख्या 69 में विद्युत धारा अंदर प्रवेश करती है उसे धनात्मक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ सर्क्यूट में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्टामापी नामक यंत्र से मापा जाता है। इस विधि में यंत्रों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति विद्युत के स्रोत के पास खड़ा होकर विद्युत धारा प्रवाहित करता है और दूसरा व्यक्ति विद्युत के विभव की माप करता है। जमीन के अंदर विद्यमान पुरावशेषों के विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध को माप कर किसी पुरास्थल का मानचित्र अथवा रेखाचित्र तैयार किया जा सकता है। विद्युत प्रतिरोध मापक का प्रयोग इस तथ्य पर आधारित है कि पत्थर मिट्टी ईंट आदि सभी पदार्थों में अंतर्भौमिक जल को अवशोषित करने की विशेषता होती है। अंतर्भौमिक जल में प्रायः खनिज लवण घुले रहते हैं जो वस्तुओं अपेक्षाकृत सरंध्र पोरस होती हैं। उनमें नमी अधिक मात्रा में अवशोषित हो जाती है। जो वस्तुएं जितनी अधिक मात्रा में नमी अवशोषित कर सकती हैं वे विद्युत धारा के प्रवाह में उतनी ही सुचालक कंडक्टर होती हैं। जिन वस्तुओं में नमी कम मात्रा में अवशोषित होती है वे विद्युत धारा के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं। किसी पुरास्थल पर दीवारों एवं खाइयों के किनारों की प्रतिरोध रीडिंग स्वाभाविक रूप से अधिक आ सकती है जबकि खाइयां और गड्ढे कम प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। इस विधि की त्रुटि यह है कि जमीन के नीचे विद्यमान कुछ प्राकृतिक वस्तुओं जैसे प्राकृतिक पाषाण खंड एवं मिट्टी के लेंस क्ले लेंस अधिक प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। इसलिए विद्युत प्रतिरोध मापक के सर्वेक्षण का सत्यापन परीक्षणात्मक उत्खनन से कर लेना अधिक अभिष्ट रहता है। जिस स्थान पर अंतर्भौमिक जल का तल बहुत ऊंचा है वहां पर विद्युत प्रतिरोध मापक ठीक से कार्य नहीं करता है। जहां पर मिट्टी निरंतर जल से तर रहती है, जहां जलवायु लंबे समय तक गर्म एवं शुष्क रहती है अथवा जहां पर मिट्टी इतनी अधिक बलुअर है कि पानी लगभग पूरी तरह से नीचे छन जाता है, वहां पर भी यह विधि विशेष उपयोगी नहीं है। चुंबक मापन अथवा मैग्नोमीटर जमीन के अंदर छिपी हुई वस्तुओं को खोजने की सबसे विकसित किंतु जटिलतम विधि मैग्नोमीटर की है। प्रोटोन मैग्नेटोमीटर एक अत्यंत संवेदी यंत्र है। इस यंत्र से पृथ्वी के अंदर किसी क्षेत्र की गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता इंटेंसिटी की मापक की जाती है। खनिज वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थों की खोज के लिए मूलतः इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जिस क्षेत्र में कोई पुरावशेष छिपे होते हैं वहां पर प्रोटोन की मात्रा अधिक होती है। साधारण मिट्टी की तुलना में गड्ढों खाइयों दीवालों ईंटों मिट्टी के बर्तन के ठीकरों एवं धातुओं में गुरुत्वाकर्षण की मात्रा अधिक तीव्र होती है। इस यंत्र के उतार चढ़ाव युक्त रेखांकनों की व्याख्या करके पुरावशेषों के पृष्ठ संख्या 70 अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी पुरास्थल पर छिपी मुद्रा निधियों आदि के अस्तित्व का आसानी से इस विधि के द्वारा पता लगाया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि धातुओं एवं धातु निर्मित पुरावशेषों के प्रति यह यंत्र अत्यंत संवेदी है। इसलिए इस विधि से प्राप्त संकेतों की पुष्टि एवं पुरावशेषों के आकार प्रकार आदि के संबंध में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्खनन अपरिहार्य हो जाते हैं। मृदा विश्लेषण किसी स्थल की मिट्टी के रासायनिक विश्लेषण द्वारा भी पुरास्थलों की खोज की जा सकती है। मानव के आवास स्वरूप किसी स्थान की मिट्टी में प्राकृतिक रूप में विद्यमान फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इन तत्वों की मात्रा का विश्लेषण करके पुरास्थल के अस्तित्व के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। खुले स्थान पर स्थित पुरास्थलों ओपन एयर साइट्स पर भी फास्फोरस के विद्यमान होने की संभावना रहती है, इसलिए फास्फोरस के विश्लेषण के माध्यम से उत्खनन के बिना ही पुरास्थलों की खोज संभव है। यदि किसी स्थान की मिट्टी में रासायनिक विश्लेषण के फलस्वरूप प्राकृतिक मिट्टी से भिन्नता परिलक्षित होती है तो उसे पुरास्थल का संकेत सूचक माना जा सकता है। सागर तल का सर्वेक्षण। भूमध्य सागर में यूनान एवं इटली के तटों के पास समुद्र में डूबे हुए प्राचीन जहाजों तथा उनमें लदी हुई पुरानिधियों की खोज निकालने में पुरातत्व वेत्ताओं को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। वेथिस केपलस नामक यंत्र की सहायता से इस प्रकार का कार्य आसानी से संपन्न किया जा सकता है। प्राचीन काल में समुद्री मार्गों से नावों और जहाजों के द्वारा व्यापार होता था। माल से लदे हुए जहाज कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में डूब जाते थे। पानी में डूबे होने के कारण इस प्रकार की खोजों से प्राप्त पुरावशेषों के परिरक्षण की भी समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐतिहासिक काल में रोम एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत का समुद्री मार्गों के द्वारा व्यापार होता था। इसके साहित्यिक तथा पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों का पुरातात्विक दृष्टि से सर्वेक्षण होना अभी तक शेष है। एसआर राव ने गुजरात के जामनगर जिले में स्थित भेंडद्वार का नामक द्वीप के आसपास भेड़ द्वारका नामक द्वीप के आसपास छिछले समुद्र तल में डूबे हुए कतिपय पुरावशेष इस विधि से खोज निकालने में सफलता पाई है। पृष्ठ संख्या 71। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुरास्थलों की खोज की विधियों में निरंतर प्रगति हो रही है। परंपरागत विधियों में आवश्यक सुधार एवं यथेष्ट परिष्कार किए जा सकते हैं। इसके अलावा पुरास्थलों की खोज के कार्य में विज्ञान ने भी उल्लेखनीय योगदान किया है। शासकीय, अर्धशासकीय तथा सार्वजनिक संस्थाओं ने समुचित आर्थिक सहायता प्रदान करके पुरास्थलों की खोज के कार्य को अधिक आसान बना दिया है। पूर्व निर्धारित योजनाओं एवं स्पष्ट पुरातात्विक समस्याओं के समाधान हेतु सुव्यवस्थित ढंग से पुरास्थलों की खोज का कार्य अब किया जाता है। तथापि खोज कार्य की विधियों में अभी भी परस्कार की संभावना है।